आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS रेडियो मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं। समर्थ जी नमस्कार।
नमस्ते अनीता जी, आप कैसे हैं?
बिल्कुल ठीक। और समर्थ जी, बहुत अच्छी खबर हमने सुनी है, आपको ATR मिला है 99.95, जो कि परफेक्ट स्कोर होता है।
जी, ये सब भगवान की कृपा है कि मुझे इतने अच्छे नंबर मिले हैं इस साल। और ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इस साल पढ़ाई, मतलब जैसे सभी को पता था कि लॉकडाउन के अंतर्गत पढ़ना बहुत कठिन था, किंतु उसके उपरांत इतना अच्छा अंक देखने को मिलना, ये बहुत ही खुशी की बात है। तो बहुत प्रफुल्लित हूँ।
बहुत ही खुशी की बात है और हमें गर्व भी बहुत है। और साथ में इस बार आपके स्कूल ने तो एक नया रिकॉर्ड भी बनाया।
जी हाँ जी, हमारे स्कूल में 8 लोगों को परफेक्ट स्कोर मिला था। बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए, और क्योंकि ये कुल 100 साल से भी अधिक के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि हमारे स्कूल ने इतने अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे।
हमारे लिए गर्व की बात ये है कि स्कूल ने तो अपना इतिहास बनाया, उस इतिहास में आप इकलौते ऐसे भारतीय मूल के हैं, तो हमारे लिए और भी गर्व की बात हुई। तो अभी आप आगे क्या करना चाहते हैं समर?
जी अनीता जी, तो मुझे हमेशा से ही मेरे मन में था कि मुझे विज्ञान में कुछ करना चाहिए, और विज्ञान में मेरी रुचि है। तो जहाँ से छात्रवृत्ति मिलेगी और जहाँ पर, क्योंकि अभी तक तो किसी विश्वविद्यालय के कोई ऑफर्स अभी तक मिले नहीं है, किंतु जब मिलेंगे तब छात्रवृत्ति के अनुसार मैं अपने दिशा को उस प्रकार मोड़ लूंगा।
लेकिन फिर भी कुछ तो होगा ना किसी एक दिशा में जाने का, विज्ञान में भी, खास प्रोफेशन में आप जाना चाहेंगे?
विज्ञान में भी मुझे अगर मुझे किसी प्रकार का अवसर मिले तो अवश्य मैं वैद्यकीय शास्त्र पढ़ना चाहूंगा। किंतु इंजीनियरिंग भी मैंने बहुत, मुझे कुछ सालों से इंजीनियरिंग में भी रुचि थी। तो यदि किसी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग का भी ऑफर मिले तो वहाँ पढ़ने का भी मुझे शौक है, तो अगर वो भी मिल जाए तो
हाँ, पहली प्राथमिकता तो आपकी रहेगी डॉक्टर बनने की। क्या उसमें भी आपकी कोई खास क्षेत्र रहेगा जिसमें आप जाना चाहते हैं, कोई दिशा निर्धारित की है अपने लिए?
वो तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे मुझे पता है कि बहुत लोगों को जब वो वैद्यकीय शास्त्र पढ़ना शुरू कर लेते हैं तब से उनकी जो रुचि होती है वो थोड़ी बदल जाती है। किंतु मेरे लिए तो अभी उसी कोई निर्धारित दिशा नहीं है। भविष्य में कुछ किसी प्रकार का संशोधन करने का कोई अवकाश मिले तो रिसर्च में भी मुझे बहुत रुचि है, क्योंकि मैंने VCA में कुछ रिसर्च वैसे भी किया था अपने बायोलॉजी के अंतर्गत। तो यदि वैद्यकीय शास्त्र में कुछ ऐसा अवसर मिलेगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा अवकाश होगा।
जी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके इलाज खोजने के लिए अभी भी हम संघर्ष कर रहे हैं, और जिनके इलाज मिल भी गए हैं उसके लिए और दिशाएं चाहिए। तो रिसर्च बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा है। तो समर्थ, आपने तो इतने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, जो इस समय हाई स्कूल में हैं उन बच्चों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
तो अनीता जी, मेरे लिए तो जो प्रणाली मुझे अच्छी लगी और जिसके कारण मुझे सफलता प्राप्त हुई वो मैं सलाह के रूप में देना चाहूंगा, और उसके लिए मूल रूप से 3 ही चीजें करनी चाहिए। प्रथमतः तो आप अपने समय का अच्छी तरह से प्रबंधन करें, कि आप हफ्ते में कितने समय पढ़ना चाहेंगे, कितना समय आप व्यायाम करेंगे, या कितने समय के लिए आप अपने मित्रों के साथ मिलेंगे, अपने माता पिता के साथ मिलेंगे। इन सभी को एक समय प्रबंधन या समय सारणी के अनुसार आप उसको डाल दीजिए, और टाइम टेबल को उसी प्रकार आप उसका अनुसरण करते रहिए। तो ये प्रथमतः, उसके साथ साथ निरंतर अभ्यास करना चाहिए। तो सदैव जब अगर एक परीक्षा नजदीक हो तो उसके हिसाब से नहीं पढ़ना है, किंतु उससे पहले ही कुछ महीनों से अभ्यास करना प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि इससे दबाव कम हो जाता है और इससे पूरी तरह से, मतलब वो बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। तो अगर ये करेंगे तो आसानी से सफलता प्राप्त हो सकती है। और अंततः सदैव अपने जो गुरुजन हैं और अध्यापक हैं, या आपके जो शुभचिंतक हैं, उनसे हमेशा आप सलाह लेते रहिएगा, और इसी फीडबैक प्रोसेस को अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो इससे मैं जानता हूं कि अवश्य ही आपको सफलता प्राप्त होगी।
क्या बात है, बहुत ही अच्छी सलाह दी है समर्थ आपने कि किस तरह से सब लोगों का ध्यान रखते हुए एक समय सारिणी बनाना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर एक बात और, अभी
जी
कुछ
हाँ
समय पहले आपको विक्टोरिया के प्रीमियर से अवार्ड भी मिला था, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए कि वो किस लिए आपको पुरस्कार मिला था।
जी हाँ जैसे कि आप जानते हैं अनीता जी, मैंने पिछले वर्ष हिंदी की पढ़ाई समाप्त कर ली थी और मुझे पूरे स्टेट में सबसे ज्यादा अंक मिले थे, यानी कि
जी
मुझे 46 रॉ स्कोर मिला था। तो
हाँ
उसके लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए विक्टोरिया के प्रीमियर लिए जो
हाँ
सबसे बेस्ट छात्र होते हैं उनके लिए एक पुरस्कार देते हैं। मेरे लिए ये बहुत ही अनोखा अवसर था क्योंकि मैंने इसका कोई किसी को अपेक्षा तो किसी के पास नहीं थी, किंतु जब आया था तो मतलब एक पूरे साल की मेहनत जैसे फल ले आती है और उसका आपको पूरी तरह से स्वाद चखने को मिलता है, तो वैसा मुझे अनुभव हुआ था।
क्या बात है, आपने अपना ये परीक्षा पिछले साल ही पूरी कर ली थी, तो उस सिलसिले में आपसे बात हुई थी और हम सबको बहुत ही गर्व महसूस हुआ था, खास तौर से इसलिए कि आप हिंदी भाषी प्रदेश के नहीं हैं, आप अपने हिंदी भाषा में इस तरह से पूरा अपना सामर्थ्य दिखाया, अपने नाम को सार्थक किया, समर्थ है। आपने उस समय बात की थी खास कवि की, खास रचना की,
जी
रश्मि
हाँ
रथी की आपने बात की थी, तो
जी हाँ
उसके बारे में अवश्य जानना चाहूंगी कि आपने वो कब पढ़ी थी और उसमें क्या ऐसी बात थी जो आपको अभी तक याद रहती है या वो आपको प्रभावित कर गई।
जी नाटक समूह में जो जब मैं भारत में रहता था तब नाटक समूह में एक बार मेरे सहपाठी ने इस एक घटना को बहुत अच्छी तरह से निरूपित किया था, तो मुझे मन में उसी समय प्रश्न फूटा था। तो मैंने उससे पूछा कि ये कहाँ से है, तो मेरे सहपाठी ने कहा था कि ये रश्मि रथी से है, और तब से मुझे उस कविता के बारे में इतनी आसक्ति आ गई थी कि मुझे पढ़ने से मतलब किसी प्रकार से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता था। तो बाद में मैंने रश्मि रथी को पढ़ना मतलब यथाशक्ति मैंने पढ़ना प्रारंभ किया, और आज आज भी जब जब मैं हिंदी के बारे में सोचता हूँ तब पहली सोच जो मेरे मन में आती है वो रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में आती है। वो जो घटना वो जब भगवान श्री कृष्ण जाते हैं सभा में और प्रस्तुत करते हैं वो तो सभी को पता होगा, और उसमें मूल रूप से जो जो पंक्ति उसका आवृत्ति होती जाती है जो हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, मतलब उसकी जो भावना है वो सदैव मेरे मन में रहती है, क्योंकि ये ऐसा मुझे मेरा मत ऐसा है कि इससे कवि कह रहे हैं कि यदि हमारे अंदर किसी प्रकार की आशा है तो कोई व्यक्ति आपको आपके आशा को पूर्ण करने से रोक नहीं सकता,
क्या बात
तो
है।
उसको मैं हमेशा अपने मन में स्मरण करता रहता हूँ। और आज भी जब किसी प्रकार के एक नए कार्य को मैं प्रारंभ करने के लिए जाता हूँ तो मैं उस घटना को स्मरण करता हूँ, शायद पंक्तियां मेरे मन में आती नहीं हो पर फिर भी उसका भाव सदैव नया ही रहता है। तो ऐसे उसने मुझे बहुत प्रभावित किया है क्योंकि ये एक समय का ज्ञान नहीं है, ये पूरे जीवन के लिए एक ज्ञान रहा गया है
क्या
मेरे
बात,
लिए।
वो जैसे एक दर्शन है और वो मार्ग
जी
आपको दिखाती रहती है, एक ही पंक्ति में जो बात है, हा हा दुर्योधन बांध मुझे, एक तरह की चुनौती रखी और ये चुनौती आपने अपने जीवन में उतार ली कि अगर कोई
जी
काम
हाँ
करना है तो उसको करना है। बहुत ही अच्छी बात आपने अपने जीवन में तो उतारी, हम सबके लिए एक बहुत अच्छा आपने संदेश भी दिया है। बहुत अच्छा लगा समर्थ आपके साथ बात करके और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी कि जिस तरह से आपने अब तक अपने परिणाम को उच्च स्तर पर रखे हैं, आगे जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी हों और जो भी दिशा आप अपने लिए निर्धारित करते हैं उसमें आप पूरी सफलता प्राप्त करें।
जी अनीता जी, प्रथमतः तो बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे बात करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।